हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 16। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णातदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैवमे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवातपित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सत्यो विधुनोति कर्मशं, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु, वैखेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं, प्रेम पुमर्थो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो नापरा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण जी जय। दूसरा स्कंद अध्याय 4 जिसका शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम। श्लोक नंबर 16। शुक्ति गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर शब्दों में भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, विचक्षणायत चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतोंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादना संगम युधस्यो भयतोंतरात्मना विन्दन्ति हि ब्रह्मण गतिं गतक्लां तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युधस्यो भयतोंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। शब्दार्थ, विचक्षणा यत चरणोपसादनात्। विचक्षणा मतलब बहुत अत्यंत बुद्धिमान। यत चरणोपसादनात् जिनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके। संगम व्युदस्य, संगम यानी आसक्ति, व्युदस्य मतलब पूर्णतया त्याग कर। उभयंत यानी वर्तमान एवं भविष्य में। अंत आत्मना हृदय तथा आत्मा का। विन्दन्ति ही ब्रह्म गति, विन्दन्ति मतलब प्राप्त आगे प्रगति करता है। ही निश्चित ही ब्रह्म गति आध्यात्मिक जगत की ओर गतक्लमा बिना कठिनाई के। तस्मय उसको सुभद्रा शुभ श्रव से जो सुना गया है उसे नमो नमः मेरा नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। अनुवाद, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या उन सबों को जो उनके अनन्य भक्त बनना चाहते हैं बारंबार उपदेश दिया है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में अपने अंतिम उपदेश 18.64 से 66 में अत्यंत ही गुह्य उपदेश दिया है। सर्वगुह्य तमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भवमद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच। अर्थात हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतएव तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने उपदेश के गुह्यतम भाग को प्रकट करूंगा। वह इस तरह है कि तुम मेरे शुद्ध भक्त बनो और मुझे आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूँ, जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा का नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। तुम अन्य सारी धार्मिकता की विधियां त्याग कर और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पाप पूर्ण कृत्यों से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम तनिक भी चिंता ना करो। जो लोग बुद्धिमान हैं, वे भगवान के इस अंतिम संदेश पर, अंतिम उपदेश पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति गुह्य ज्ञान कहलाती है और आत्मा का ज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। इसके बाद का कदम ईश्वर साक्षात्कार है, जो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की चरम परिणति ईश्वर साक्षात्कार है और जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह सहज रूप से और स्वेच्छा से भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा करने लगता है। भगवान की यह भक्तिमयी सेवा सदैव ईश्वर प्रेम पर निर्भर करती है, रहती है और कर्मयोग, ज्ञान योग या ध्यान योग में स्वीकृत औपचारिक सेवा से भिन्न है। श्रीमद् भगवद गीता में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न उपदेश और वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन की विकृत अवस्था, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्तियों की सिद्धि इत्यादि के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से स्वयं सफूर्त प्रेम से उनकी शरण में जाता है, वही वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्मसात कर पाता है। जो इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है, वह तुरंत ही जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जीवन की यही पूर्णता ब्रह्मगति अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर की प्रगतिशील कूच कहलाती है। जैसा कि श्री राजीव गोस्वामी ने वैदिक आश्वासनों के आधार पर बताया है कि ब्रह्मगति का अर्थ है भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना और उस रूप में मुक्त जीव पर व्योम में किसी एक वैकुंठ में नित्य निवास करता है। जीवन की यह सिद्धि भगवान के शुद्ध भक्त को सिद्धि की कठोर साधना किए बिना प्राप्त होती है। ऐसा भक्तिमय जीवन कीर्तनम, स्मरणम, ईक्षणम इत्यादि से पूर्ण होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में उल्लेख किया गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय जीवन की इस सरल शैली को ग्रहण करके विश्व के किसी भी भाग में, मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करें। जब ब्रह्मा जी वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण से मिले तो उन्होंने इस प्रकार से स्तुति की। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यति विभव क्लेश्यन्ति क्लेशभूत ये केवल बोध लभ्यते तेषाम असौ क्लेश एव केशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषा वघातना। श्रेय श्रुतिं भक्ति मोदस्यति विभो क्लिश्यन्ति के वलबोध लभ्यते तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषा वघातिनाम्। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 4 में इस तरह बताया गया है कि भक्ति योग ऐसी सर्वोत्कृष्ट पूर्णता है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न किए बिना ही प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी पर चावल धान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वे कर्म कांड या ज्ञान कांड या योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट ना हो। अभी तो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में कीर्तनम स्मरण जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के चरम सिद्धि प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं कुरु तु वाचारं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब परीक्षित महाराज ने भगवान के अद्भुत कार्य कलापों के विषय में पूछा कि वो भगवान जो इस भौतिक जगत की किस तरह से भगवान ने सृष्टि की है उसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे बताइए, और उसका उत्तर देने से पहले शुकदेव गोस्वामी विभिन्न श्लोक में भगवान परम पुरुष भगवान जो कि श्री कृष्ण है उनकी अद्भुत स्तुति कर रहे हैं। अत्यंत ही सुंदर स्तुति है जो कि श्लोक नंबर 12 से स्टार्ट हुई। पहले वे कहते हैं नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्षवत्मने के मैं उस परम पूर्ण पुरुषाय परस्मय पुरुषाय मैं उस पूर्ण परम पुरुष भगवान को प्रणाम करता हूँ। सत उद्भवस्य स्थानम निरोध लीलया जो सृष्टि को सृजन करते हैं पालन करते हैं प्रलय करते हैं वो तो इस भौतिक जगत के समस्त गुणों से निर्गुण है। फिर गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना पर फिर भी वो अचिंत्य है। वो इस भौतिक जगत के इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतिविधियां अचिंत्य हैं। आगे वे कहते हैं भूयो नमः सद वृजिनत चिदीस्ता असंभवाया किल सत्त्वमूर्तय पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृक्यदाशुषे। वो अपने भक्तों को समस्त आपत्तियों से विमुक्त करते हैं। भूयो नमः सद्वृजिनच्छिद, अपने भक्तों को आपत्ति से मुक्त करते हैं और जो असदा, जो असत हैं, जो अभक्त हैं, उनकी नास्तिक मनोवृत्ति का अंत करते हैं अंदर से। असंभवाया खिल सत्वमूर्तये, ऐसे सत्वमूर्तये यानी कि वो सत्वगुण मूर्ते यानी जो परम शुद्ध हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पुंसाम पुनः पारम अहंस आश्रय, वो लोग जो आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, वो ऐसे शुद्ध भक्तों को विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वम, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। विदुर काष्ठाय मुह कुयोगी नाम, जो कुयोगी हैं उनके लिए विदुर काष्ठाय, वो हमेशा कोई न कोई समस्या खड़ी कर देते हैं। नीरस्त साम्यातिशये नराधना, और वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों में परम भोक्ता हैं, फिर भी स्वधामनि ब्रह्मणि रास्ते रौस्ये यते नमः, फिर भी वो सदैव अपने आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में स्थित अपने धाम में भोग करते हैं, कोई भी उनकी तुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। यत् कीर्तनम् यत् स्मरणम् यदीक्षणम्, वो जिनके कीर्तन करने से, केवल स्मरण करने से, यदीक्षणम् जिनके दर्शन करने से, यद् वंदनम् जिनकी वंदना करने से, यत् श्रवणम् जिनके विषय में श्रवण करने से, यदारहणम् जिनकी पूजा करने से, लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम्, इस पूरे संसार के अपराध नष्ट हो जाते हैं। तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज अत्यंत ही सुंदर बातें कहते हैं विचक्षण, यानी कि भगवान के शरण में जाने के लिए जो पहली क्वालिटी यहाँ पर बता रहे हैं वो है विचक्षण, यानी कि अत्यंत ही बुद्धिमान व्यक्ति ही यह चरणोपसादना, जिनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करते हैं। वास्तव में भक्तों, ये केवल बुद्धिमान के, जो महान बुद्धिमान है ना, उनके ही भाग्य की बात है। बेवकूफ लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, वो केवल इस भौतिक जगत में आनंदित होना चाहते हैं। भगवान बताते हैं 7.20 में कि कामस्तस्य हृतज्ञाना प्रवत्यन्ते अन्य देवता, कामनाओं ने जिसकी बुद्धि को, जिसके ज्ञान को हरण कर लिया है, वो मेरे पास कभी नहीं आते। जो बेवकूफ होते हैं, जो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूढ़ हैं, वो मेरी शरण में कभी नहीं आते। और भगवान बताते हैं ज्ञानवान मम प्रपद्यते, अनेक अनेक जन्मों के बाद जिसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है वही मेरी शरण में आते हैं। तो हमें भगवान के पॉइंट ऑफ विजन से देखना चाहिए कि भले ही कोई भौतिक जगत, भौतिक लिहाज से हमें बहुत बुद्धिमान दिखता है, लेकिन यदि वो भगवान की शरण में नहीं गया है तो भगवान कहते हैं वो महामूर्ख है, मूढ़ है। तमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, वो मूढ़ है। लेकिन भगवान यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं विचक्षण, जो अत्यंत बुद्धिमान है वो एक ही कार्य करते हैं क्या, यत चरणों प्रसादनात्, उनके चरण कमलों में आत्मसात करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। और इस कलयुग में यदि बुद्धिमान की कोई परिभाषा है तो वो यही है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बता दिया गया यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती सुमेधसा। कलयुग में यदि आपको देखना है कि बुद्धिमान कौन है तो जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की भक्ति करता है वही बुद्धिमान है, सुमेधसा वो परम बुद्धिमान है। तो यही संकीर्तन, यहाँ जैसे हमने बताया यत कीर्तनम यत स्मरणम, जिसके कीर्तन से, जिसको स्मरण से, जिसके दर्शन से, जिसके वंदन से, जिसकी कथाओं को श्रवण करने से हम हमारे समस्त अपराध नष्ट हो जाते हैं, उस भगवान की शरण में केवल बुद्धिमान आते हैं। और भगवान की शरण में आने से क्या होता है, संगम युदास्यो भयतोंतरात्मना। संगम युदास्यो, संग जो है यानी आसक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है। आज तक जितना भी दुख पाया है ना, जितना भी कष्ट हुआ है ना, वो केवल और केवल आसक्ति के कारण ही प्राप्त हुआ है। जीव आत्मा के लिए इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु के छिन जाने से, खत्म होने से या उसका विनाश होने से जीव आत्मा को कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुंचता, कभी भी कोई दुख नहीं पहुंचता। ये दुख और ये कष्ट, ये प्रॉब्लम्स, ये हृदय के अंदर जो संताप है वो क्यों होता है, क्योंकि उस वस्तु या व्यक्ति के अंदर हमारी आसक्ति है। ये आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है। और जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आसक्ति हो जाती है फिर क्या होता है, आसक्ति से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। संगम युदस्यो भयतो भयतोंतरात्मना, भयतो उभयतो का मतलब होता है वर्तमान आसक्ति और भविष्य में जितनी भी भौतिक जो आसक्ति है जो कि हमारे दुख का कारण है, उससे उस जीव का जीव जो है ना वो सारी आसक्ति से छूट जाता है जब वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है। और जब आसक्ति समाप्त हो जाती है तो समझो दुख समाप्त हो जाते, संकट समाप्त हो जाते, प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, टेंशन खत्म हो जाती है। ये सब जो कुछ भी संसार में बारंबार जन्म मरण का चक्कर क्यों है, क्योंकि आसक्ति जुड़ी हुई है। अंतिम समय में वो आसक्ति पुनः याद आती है, उसी व्यक्ति और वस्तुओं की याद आती है जिनसे हमारी आसक्ति होती है, और इसी के कारण हमें दोबारा इसी संसार में आना पड़ता है। लेकिन जब भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर साफ साफ बताया विचक्षण, जिनके अंदर ज्ञान है, जो बुद्धिमान है, जो जानते हैं कि मेरा संबंध भगवान से है, मेरा कल्याण केवल भगवान के विषय में जानने से है, भगवान के विषय में श्रवण करने से है, भगवान की कथाओं को श्रवण करने से है, भगवान के पवित्र नाम को जप करने से है। तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति जब भगवान की शरण में आता है, और यही श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यही एकमात्र उपदेश है भगवान का। घुमा फिरा के भगवान सारी भगवत गीता में यही बोलते हैं कि आपको मेरी शरण में आना है। इसी श्री प्रभुपाद जी ने बताया सर्व गुह्य तमम भूया श्रोम में, भगवान ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता बता दी, फिर बोला यद इच्छे से तथा करो, जैसी मर्जी है वैसा करो। लेकिन अर्जुन की इतना बोलने के बाद भी भगवान ने सोचा पता नहीं क्या ना कर बैठे, इसलिए बताया कि सर्व गुह्य तमम भूया, मैं वापिस से तुम्हें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉप सीक्रेट बात है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि इष्टो सीमें दृढ़मिति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब कोई किसी से प्रेम करता है तो भले ही उसको फ्रीडम देता है, मगर उसकी इच्छा होती है कि वो गलत डिसीजन ना ले। और भगवान ने सोचा अर्जुन ना जाने क्या सोचेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए बोला, नहीं नहीं अर्जुन, तुम्हारे डिसीजन लेने से पहले मैं तुम्हें अपना निर्णय बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मन मना भव मत भक्त, मन में मैं केवल मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। और यदि तुम्हारा मन मुझ में लग गया ना, तो मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोसी में, बस ये आसक्ति जो अलग अलग वस्तु और व्यक्तियों में बट गई है ना, वो यदि मामे वैश्यसी मुझ में आविष्ट हो जाए। आविष्ट का क्या मतलब है जानते हो? जैसे अगर कोई अभिनेता कोई कार्य करता है, कोई अदाकार जो है, कोई हीरो जो है, वो कोई गेटअप करता है, भाई रोल करता है, जब तब उसके जो भी रोल कर रहा होता है उसी का उसको आविष्ट हो जाना चाहिए। जैसे अगर कोई वो श्री राम का रोल कर रहा है तो वो श्री राम के जैसा ही एक्ट करेगा, है ना। और अगर कोई हनुमान जी का रोल कर रहा है तो हनुमान जी जैसा ही उसको एक्ट करना है, दास्य भाव दिखाना है। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं मैयावेश्य, यानी कि तुम सदैव अपने मन को मुझ में आविष्ट कर दो। जैसे एक पत्नी होती है, जब उसका पति घर से बाहर जाता है कुछ समय के लिए, और जाते समय बोल के जाता है कि मैं 2-4 दिन में वापस आऊंगा, तो पतिव्रता स्त्री जो है वो प्रत्येक क्षण में, 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, फिर वो इसको यही लगता है कि बस आज तो आएगा, तो कुछ भी कार्य करती है ना तो यही सोच के करती है कि मैं उसको उसके लिए कर रही हूँ, आ जाएगा, उसको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, उसको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, वो आएगा तो उसको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, वो सारे रूम सेट करेगी, घर सेट करेगी, वो हर उसके आने के लिए उसमें आविष्ट होती है कि मैं मुझे उसकी सेवा करनी है। उसी तरह से जो भक्त होता है वो सदैव भगवान के अंदर आविष्ट होता है कि मुझे किस तरह से भगवान को प्रसन्न करूं। और भगवान कहते हैं मामे वैश्यसी, जब तुम मुझ में सदैव अपने मन को लगाओगे, सत्यम ते मुझे ही प्राप्त करोगे, आविष्य मुझ में मन लगा हुआ होगा तो मुझे ही प्राप्त करोगे। और सत्य कहता हूँ अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रति जाने प्रियोसी में, मैं तुम मुझे बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूँ कि यदि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं से हटकर मेरे चरणों में लग गया और तुम मेरी भक्ति करना शुरू करोगे, तो मैं तुम्हें भौतिक कष्टों से मुक्त करा के अपने धाम में लेके जाऊंगा। मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है कि सारे धर्मों को छोड़कर सिर्फ अकेले मेरी शरण ग्रहण करनी होगी। और सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रज, अहम तो हम सर्व पापी भी हो, भले जितने भी अपराधी हो, सारे अपराधों से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मोक्षी श्यामी माँ सुच, तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो। इसलिए श्री रूपा जी कहते हैं जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, वे भगवान के इस अंतिम उपदेश पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। भले ही पूरी भगवत गीता याद न हो, लेकिन ये जो अंतिम उपदेश है वो सदैव स्वीकृत करना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा कल्याण होगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, आध्यात्मिक गुह्य ज्ञान अनुभूति जो है वो गुह्य ज्ञान कहलाता है। और पहला स्टेप क्या है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का ज्ञान। और दूसरा स्टेप क्या है कि आत्मा भगवान का अंश है, ईश साक्षात्कार। और स्वेच्छा से जब उसको पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध भगवान के साथ है, तो वो क्या करेगा, स्वेच्छा से भगवान का बनकर, भक्त बनकर उनकी प्रेम में ही सेवा करेगा। और जब जीव इतना भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, फिर विंदन्ति ही ब्रह्म गतिम गतक्लमा, कि वो बहुत ही तीव्रता के साथ आगे प्रगति करता है। विंदन्ति ही ब्रह्म गतिम, ब्रह्म गति मतलब आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ता है, और गतक्लमा का मतलब होता है उसको कोई कठिनाई नहीं होती है। वैसे तो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, और अष्टांग योग है, बहुत सारे योग हैं जिसमें इंद्रियों को दमन करना होता है, मन को दमन करना होता है, अलग अलग भगवद गीता में भगवान ने सारे ही बताए, अष्टांग योग की विधि बताई, ज्ञान योग की विधि बताई, ध्यान योग की विधि बताई, लेकिन भगवान कहते हैं ये बहुत मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्लेशोधिका तरस्ते श्याम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता हि कतिर् दुःखम् देहवत् भिरवाप्यते। क्लेशोधिक तरस्तेषां, क्योंकि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, भगवान के प्रेम के अतिरिक्त बाकी सारे मार्गों में भगवान को निराकार माना जाता है। ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, या अष्टांग योग हो, जो भी है उसमें भगवान के साथ प्रेम नहीं होता है, उसमें निराकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा अपना साकार स्वरूप है, तो भगवान कहते हैं देहवत विरवाप्यते, क्योंकि आप देहवत हो, आप देह वाले हो, इसलिए साकार भगवान की सेवा करना बहुत आसान है। इसे भगवान की साकार सेवा करने वाला बिना कठिनाई के अनन्य चिंतयन्तो मां अनन्य चेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहम् सुलभा पार्थ। 8.14 में भगवान बोलते हैं, उसके लिए तो मैं बहुत आसान हूँ, उसको कुछ नहीं करना है, बस मुझे अनन्य चेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः, अनन्य चेत के साथ मुझे कंटिन्यूस स्मरण करना है। और स्मरण किसका करते हैं? जिससे प्रेम करते हैं। जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसको स्मरण करने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, वो स्मरण हो जाता है। जिससे प्यार करते हैं ना, तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं, खा रहे होते तो क्या लगता है कि नहीं उससे अच्छा लगता है, उसके लिए बचा के रखती हूँ। किधर जा रहे होते हैं तो क्या लगता है, कहीं वो आ जाएगा तो उसे वो मैं नहीं होंगी तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। मतलब उसको प्रेम करने का मतलब होता है कंटिन्यूस उसको स्मरण हो ही रहा होता है। जैसे माता होती है, वो भले किधर भी होती है, उसका छोटा बच्चा अगर घर पे है तो कंटिन्यूस उसको याद कर रही होती है कि अभी जाग ना गया हो, उसको दूध चाहिए होगा, ये वो। तो उस तरह से विंदन्ति ही ब्रह्म गतिम गतक्लमा, फिर उसको कठिनाई नहीं होती है आगे बढ़ने की, आगे प्रगति करने की, आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करने की। ऐसे भगवान को तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं बहुत बहुत बारंबार प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात श्रीला प्रभुपाद जी ने बताई है कि अतएव मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में जीवन की इस सरल शैली को ग्रहण करे, करके विश्व के किसी भी भाग में मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करें। एक सरल, श्री प्रभुपाद जी सरल बता रहे हैं कि आसान है ना भक्ति करना बहुत, क्योंकि प्रेम करना तो हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारे हृदय में पहले से ही भगवान ने रख दिया है, बस उस प्रेम को भौतिक वस्तु और व्यक्तियों से हटाकर कृष्ण के चरणों में लगाना है, तो ये कोई कठिन नहीं है। कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे, कृष्ण के नाम का जप करेंगे, तो अवश्य कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, और ये बहुत सरल विधि है। इसी को श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसी को अपनाना चाहिए। और यहाँ ब्रह्मा जी की एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना, जो जब भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में थे और ब्रह्मा जी वृंदावन में खेला करते हुए भगवान की स्तुति जब करते हैं, जब भगवान को उन्होंने देखा तो भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति की। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभु, हे भगवान जो श्रेय कर है, जो वास्तव में हमारा कल्याणकारी मार्ग है, आत्म साक्षात्कार का जो सर्वोत्तम मार्ग है, वो तो क्या है, भक्ति उदस्य, यानी बाकी सब छोड़कर केवल भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लभ्यते, यदि कोई इस मार्ग को त्याग कर देता है तो ज्ञान का अनुसरण करता है और उससे केवल क्लेश उठाना पड़ता है, केवल दुख है। ज्ञान मार्ग में वो आनंद नहीं है जो भगवान की भक्ति मार्ग है। कोई बोल सकता है कि भाई जो ज्ञान का अनुसरण करते हैं उन्हें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, योग शक्ति, निर्विशेष मुक्ति का लाभ होता है, लेकिन ये सब तथाकथित लाभ है, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि उनसे जीव को परमेश्वर की प्रेम भक्ति करने का वैधानिक पद प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में आनंद तब आता है आत्मा को जब कृष्ण से प्रेम करने का अवसर मिलता है, लेकिन बाकी जितने भी मार्ग हैं उनमें क्या है, क्लेशंत ये केवल बोध लभ्यते तेषाम असौ क्लेश एव शिष्यते। और कैसा उनको कष्ट मिलता है, जिस तरह से नान्यत यथा स्थूल तुषावगातिना, जिस तरह से पूरा ट्रक भर के आपके पास ना भूसी हो, भूसी जो है उसके अंदर एक भी दाना अनाज का नहीं हो, लेकिन बहुत सारी भूसी हो, उसको आप कितना भी पीटो कितना भी पीटो, उसमें से गेहूं निकलेगा क्या, उसमें से चावल निकलेंगे क्या, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं, रस नहीं है, आनंद नहीं है। तो जिस तरह से भूसी को पीटने से अन्न नहीं मिलता है, उसी तरह से केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ क्या आता है, केवल और केवल क्लेश आता है। तेषाम असौ क्लेश एव शिष्यते, सिर्फ और सिर्फ उसको कष्ट ही प्राप्त होता है। वास्तव में संसार में आनंद प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि भगवान के अंदर हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाए। इसी बात को यहाँ पर भागवत महापुराण में बताते हैं कि आप संसार में जो भी धर्म पालन करते हो उसका मीटर क्या निकलना चाहिए, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक सेन कथा सुय नोत्पादयेत यदिरतिम शम एव हि केवलम। आप अपने सारे धर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करते हो, लेकिन यदि विश्वक सेन कथा सुय नोत्पादयेत यदिरतिम, यदि रति उत्पन्न नहीं होती है, भगवान की कथाओं को श्रवण करने की इच्छा नहीं होती है, तो शास्त्र कहता है जो कुछ भी किया अब तक वो सब श्रम मात्र है, केवल श्रम है, उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वास्तविक लाभ क्या है, अतः पुंबिर्द्वजः श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः, जो वर्णाश्रम में धर्म का पालन करता है वो स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य, अगर वो अपने धर्म को पूरी तरह से अच्छे तरीके से पूरा करता है तो उसको क्या होगा, संसिद्धिम हरितोषण। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म का अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त होती है वो क्या है, संसिद्धिम हरितोषण, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। और वो कैसे संभव है, केवल भगवान से प्रेम करो, भगवान के प्रति अपने भगवान के चरण को अपने हृदय में स्थान देना। विचक्षणा, वो केवल बुद्धिमान ही होते हैं जो भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके अतिरिक्त जो भी करेंगे वो हमें वो वास्तविक आनंद प्रदान नहीं कर सकेंगे जिसकी खोज हम जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान जिनके केवल चरण कमलों को अपने हृदय में स्थान देने से जीव के सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। विंदन्ति ही ब्रह्म गतिम गतक्लम, और बगैर किसी कठिनाई के वो आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूँ। हरे कृष्ण।